بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراج ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی شروتا متروں کی سیوا میں زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام پہنچے۔ شروتا، آج ہم اپنے کارکرم کا آرمبھ سورہ بقرہ کی آیت کرمانک 207 سے 210 تک کی تلاوت اور انواد سے کر رہے ہیں۔ تلاوت کا شرح پراپت کر رہے ہیں پرخیات قاری پور زرگری۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من یشری نفسا ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔
اللہ کے نام سے جو اتیانت کرپاشیل اور دیاوان ہے، اور ایمان والوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو ایشور کی پرسنتا پراپت کرنے کے لیے اپنی جان بھی دے دیتا ہے، اور ایشور اپنے بندوں کے پرتی اتیان دیاوان ہے۔ ہے ایمان والو، تم سب کے سب شانتی میں پرویش کرو اور ایشور کے پرتی سمرپت رہو، اور شیطان کے پد چنوں کا انوسرن نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا ہوا شترو ہے۔ پھر یدی تم ان سب اسپشٹ نشانیوں اور چمتکاروں کے آنے کے بعد بھی پھسل کر پد بھرشت ہو گئے تو جان لو کہ ایشور پربھتوشالی اور تتو درشی ہے۔ کیا یہ پد بھرشت اتنے سارے اسپشٹ ترکوں کے باوجود اس بات کی پرتیکشا کر رہے ہیں کہ ایشور اور فرشتے بادلوں کی چھایا میں پرکٹ ہو کر ان کے سامنے آئیں اور ان کے سمکش نئے ترک رکھیں تاکہ یہ ایمان لائیں، جبکہ لوگوں کے مارگ درشن کے بارے میں ایشوریہ آدیش پورا ہو چکا ہے اور سبھی معاملے ایشور ہی کی اور لوٹائے جائیں گے۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ شروتاؤ، سبھا میں آپ کا سواگت ہے۔ آج گروار ہے، نومبر کی 18، آبان کی 27 اور ربیع الثانی کی 12 تاریخ۔ کاریکرموں کی روپ ریکھا آپ نوٹ کر سکتے ہیں۔ پہلے ہم آپ کو وگت کی ہی بھاتی وشو سماچار سنوائیں گے، پھر راجنیتک چرچا آپ سنیں گے۔ راجنیتک چرچا کے بعد ساپتاہک کاریکرم پیش کیے جائیں گے، آج کی بات اور سفل مہیلائیں۔ یہ تھی ہمارے آج کے کاریکرموں کی روپ ریکھا۔ ہمارے کاریکرموں کو آپ ویب سائٹ پر بھی دیکھ سکتے ہیں، partstoday.com/HI۔ اور اب کچھ ہی چھڑوں میں ریڈیو تہران سے وشو سماچار پیش کیے جائیں گے۔ یہ تہران ہے، اب آپ وشو سماچار سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے آج کے پرمکھ سماچاروں کا سارانش۔ IAEA نے ایران کے پرمانو کارکرم کے بارے میں اپنی نئی رپورٹ میں پرانا دعویٰ دہرایا ہے۔ عراق کے بھوتپور گرہ منتری کے انوسار امریکہ کی دیکھ ریکھ میں داعش عراق میں بھومیگت پناہگاہیں بنا رہا ہے۔ آذربائیجان گنراجیہ نے آرمینیا کو کڑی چنوتی دیتے ہوئے دشپرینام بھگتنے کو کہا ہے۔ کشمیر کے حیدر پورا میں انکاؤنٹر میں مارے گئے عام ناگرکوں کے مدعے کو لے کر پردرشن تیز ہو گئے ہیں۔ اور اب آپ وستار سے قائم رضوی سے وشو سماچار سنیے۔ انتراشٹری پرمانو ارجا ایجنسی IAEA نے ایران کے پرمانو کارکرم کے بارے میں اپنی نئی رپورٹ جاری کی ہے۔ بدھوار کو اپنی نئی رپورٹ میں پرانے دعوے کو دہراتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ایران نے سموردھت یورینیم کی ماترا میں وردھی کی ہے۔ IAEA نے تہران کی اور سے پرمانو سمجھوتے کے الگھن کا بھی آروپ لگایا ہے۔ IAEA نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران میں 20% سموردھت یورینیم کا بھنڈار 148 کلو گرام تک پہنچ گیا ہے۔ انتراشٹری پرمانو ارجا ایجنسی نے ایسی حالت میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ تہران کے ورد پرتبند ہٹوانے کے لیے ایران اور پرمانو سمجھوتے کے باقی پکشوں کے بیچ وینا میں نومبر کے انت میں وارتا شروع ہوگی۔ عراق کے بھوتپورو گرہ منتری نے بتایا ہے کہ امریکی نیتتو میں داعش دیش کے بھیتر بھومیگت پناہ گاہیں بنا رہا ہے۔ المعلومہ سماچار ایجنسی کے انوسار باقر جبر نے کہا ہے کہ آتنکوادی گٹ داعش نے اپنے آتنکوادیوں کو سرکشت رکھنے کے ادیش سے عراق کے بھیتر بھومیگت پناہ گاہیں بنانے کا کام شروع کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وشیش بات یہ ہے کہ یہ کام امریکیوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ عراق کے بھوتپورو گرہ منتری نے بتایا کہ سیریا سے ملنے والی عراقی سیما پر کچھ ایسی گھٹنائیں گھٹی ہیں جن کے بہت ہی خطرناک دشپرینام سامنے آئیں گے۔ ان کا کہنا تھا، عراق کی سرکار سے میرا انورودھ ہے کہ سیماورتی کھیتر میں امریکی یدھک ویمانوں کی اڑانوں کے بارے میں وہ اپنی نیتی کو اسپشٹ کرے۔ संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा है कि तालिबान दाइश का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। अफगानिस्तान के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेष प्रतिनिधि ने कहा कि तालिबान के भीतर दाइश का मुकाबला करने की क्षमता नहीं दिखाई देती। डेबरा लाइन्स ने बुधवार की रात सुरक्षा परिषद में अफगानिस्तान में मानवीय त्रासदी के बारे में चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि इस बात में संदेह पाया जाता है कि तालिबान अफगानिस्तान में बढ़ते चरमपंथ को रोकने में सफल रहेंगे और दाइश का मुकाबला करने में सक्षम रह पाएंगे। उन्होंने कहा कि तालिबान द्वारा अफगानिस्तान पर नियंत्रण स्थापित करने के बाद वहां के लोग ये सोचते हैं कि उनको भुला दिया गया है और वे ये भी सोचते हैं कि इस समय उनको उस बात की सजा मिल रही है जो अपराध उन्होंने किया ही नहीं। ज्ञात रहे कि आतंकवादी संगठन दाइश के आतंकी आए दिन अफगानिस्तान में कोई ना कोई हिंसक कार्रवाई करते रहते हैं। बाद में वे इन कार्रवाइयों की जिम्मेदारी भी कबूल कर लेते हैं। तालिबान अब तक दाइश को अफगानिस्तान में नियंत्रित करने में पूरी तरह से विफल सिद्ध रहे हैं। हालांकि तालिबान ने अभी हाल ही में दाइश के विरुद्ध एक अभियान भी आरम्भ किया है। अजरबैजान गणराज्य के विदेश मंत्री ने आर्मीनिया को धमकी देते हुए कहा है कि हर प्रकार के हमले के दुष्परिणाम उसे ही भुगतने होंगे। अनातोली समाचार एजेंसी के अनुसार जेहून बायरामेफ ने आर्मीनिया के अधिकारियों से कहा है कि वे जिम्मेदारी के साथ काम लें। उन्होंने चेतावनी दी है कि आर्मीनिया की ओर से अंतर्राष्ट्रीय नियमों के उल्लंघन की स्थिति में अजरबैजान की ओर से मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। अजरबैजान गणराज्य के विदेश मंत्री ने 44 दिवसीय युद्ध में बाकू की विजय की ओर संकेत करते हुए, जिसमें रूस, आर्मेनिया और अजरबैजान गणराज्य की ओर से संयुक्त बयान जारी किया गया था, ये कहा कि इस त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर हुए अब एक वर्ष का समय गुजर चुका है। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद आर्मेनिया के असहयोग के कारण इस समझौते के कई अनुच्छेदों को व्यावहारिक नहीं बनाया जा सका है। याद रहे कि सन 2020 को 27 सितंबर को काराबाख नामक विवादित क्षेत्र में आर्मेनिया और अजरबैजान गणराज्य के बीच झड़पें आरंभ हुई थीं, जो रूस की मध्यस्थता से 10 नवंबर 2020 को समाप्त हो गई थीं। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में दो दिनों से हो रही भारी बारिश से बाढ़ आ गई, जिसने वैंकूवर नगर में तबाही मचा दी है। कनाडा में आने वाली विनाशकारी बाढ़ से 25 लाख की आबादी वाले वैंकूवर शहर का हाल बेहाल हो चुका है। हालांकि इस बाढ़ में एक व्यक्ति की ही मौत हुई है और दो अन्य लापता हो गए हैं, लेकिन कनाडा की सबसे बड़ी बंदरगाह बंद हो गई है। इस बंदरगाह से प्रतिदिन 4,500 करोड़ रुपए के माल का परिवहन हुआ करता था। बारिश का पानी भरने से कनाडा की सबसे बड़ी बंदरगाह और 25 लाख की आबादी वाला वैंकूवर शहर बेहाल है। वहां हर तरफ पानी भरा दिखाई दे रहा है। जल भराव के चलते बंदरगाह को बंद कर दिया गया है। बाढ़ के कारण कुछ क्षेत्रों में भूस्खलन भी हुआ है और बहुत से रास्ते बंद हो गए हैं। वैंकूवर की बंदरगाह के प्रवक्ता ने बताया है कि ब्रिटिश कोलंबिया के अंदरूनी इलाकों में बाढ़ के कारण वैंकूवर बंदरगाह से आने जाने वाले सभी रेल रास्तों को रोक दिया गया है। इस शहर का दूसरे शहरों से रेल नेटवर्क भी कट गया है। एयरपोर्ट पर पानी जमा होने से फ्लाइट ऑपरेशन भी बंद हैं। इस बाढ़ से प्रांत के 26 लाख लोग प्रभावित बताए जा रहे हैं। दो दिनों में हाईवे पर वाहनों में फंसे हुए 500 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। भारत नियंत्रित कश्मीर के श्रीनगर के हैदरपोरा में एक मुठभेड़ में मारे गए दो नागरिकों के मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी हैं। भारतीय संचार माध्यमों के अनुसार श्रीनगर के हैदरपोरा एनकाउंटर में मारे गए पीड़ितों के लिए न्याय और उनके शव की वापसी की मांग को लेकर अल्ताफ भट्ट और मुदस्सर गुल के परिजनों ने आम नागरिकों के साथ विरोध प्रदर्शन किया। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि यह अपमानजनक है कि जम्मू कश्मीर प्रशासन ने परिवारों को शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी। دوسری اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی پی ڈی پی کی پرمکھ محبوبہ مفتی نے سرکشا بلوں کے انکاؤنٹر پر سوال اٹھائے ہیں. انہوں نے سرکار پر آتنکواد کے نام پر عام ناگرکوں کی ہتیا کرنے کا بھی آروپ لگایا. پی ڈی پی چیف اس کے خلاف آج سڑکوں پر اتری. اس سے پہلے انہوں نے حیدرپورہ انکاؤنٹر کی نیائک جانچ کی مانگ کی تھی جس میں دو آتنکوادیوں سہیت دو استھانی ناگرکوں کی موت ہو گئی تھی. جموں کشمیر پولیس نے انہیں آتنکوادیوں کا سہیوگی بتایا تھا. گجرات دنگوں کے دوران مارے گئے کانگریس کے پورو سانسد احسان جعفری کی پتنی زکیہ جعفری نے سپریم کورٹ سے کہا ہے کہ 2002 کے گجرات دنگوں کے دوران راجنیتک ورگ جانچ کرتاؤں نوکر شاہی اور انی کے بیچ تگڑی ملی بھگت رہی اور وشیش جانچ دل ایس آئی ٹی نے ان تتھیوں کی جانچ نہیں کی. شیرش عدالت نے زکیہ کے وکیل کپیل سبل سے پوچھا کہ کیا وہ ایس آئی ٹی کے ارادوں کو اس کے لیے ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں اور کہا کہ ملی بھگت جیسا شبد شیرش عدالت دوارا گٹھت ایس آئی ٹی کے لیے بہت کڑا شبد ہے. جسٹس اے ایم خان ولکر جسٹس دنیش ماہیشوری اور جسٹس سی ٹی روی کمار کی پیٹھ نے کہا کہ اسی ایس آئی ٹی نے دنگوں کے معاملے میں آروپ پتر داخل کیے جس میں آروپیوں کو سزائیں بھی ہوئی ہیں. زکیہ جعفری نے ورش 2002 کے دنگوں کے دوران گجرات کے تتکالین مکھیہ منتری نریندر مودی سہت 64 لوگوں کو ایس آئی ٹی کی کلین چٹ کو چنوتی دی ہے. بھارت کے ہریانہ راجیہ کے گروگرام میں سارجنک استھلوں پر نماز پڑھنے کی راہ میں رکاوٹوں کے بیچ سکھ سمودائے نے سوہارد اور دھرم نرپیکشتا کی ایک مثال پیش کی ہے. گروگرام کی گرودوارا سنگھ سبھا سمیتی کے ایک استھانی سنگھ نے یہ گھوشنا کی ہے کہ وہ مسلمانوں کو گرودوارے میں نماز پڑھنے کی انومتی دے گا. اس سمیتی کے ہیری سندھو نے کہا ہے کہ کھلے علاقوں میں نماز کے ورودھ کے بارے میں جان کر بہت دکھ ہوا. انہوں نے کہا کہ ہمارے گرودواروں کے دروازے ہمیشہ سب کے لیے کھلے ہیں. اگر مسلمانوں کو جمعے کی نماز کے لیے جگہ کھوجنے کی سمسیا ہو رہی ہے تو گرودواروں میں نماز ادا کرنے کے لیے ان کا سواگت ہے. انہوں نے کہا کہ پرتیک گرودوارے میں ایک سمے میں ہزاروں لوگوں کو سمایوجت کرنے کی کشمتا ہے. سمیتی کے ایک انیہ سدسیہ شیر دل سنگھ نے کہا ہے کہ گرودوارا گرو کا دربار ہوتا ہے جہاں کوئی بھی آ کر پرارتھنا کر سکتا ہے. سنگھ نے کہا کہ اگر ہمارے مسلمان بھائیوں کو سمسیاؤں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو ہم گرودواروں کے پریسر کی پیشکش کریں گے. انہوں نے کہا کہ جو کوئی بھی ان کی آستھا اور وشواس کے باوجود نماز ادا کرنا چاہتا ہے اس کا وہ سواگت کرتے ہیں. بھارت اور چین کے بیچ واستوک نینترن ریکھا پر گتیرودھ کی استھتی بنی ہوئی ہے. چین کی ستارڑھ کمیونسٹ پارٹی نے ایک مہتوپورن پرستاؤ میں کہا ہے کہ چینی سینا نے سیما رکشا سے سمبندھت پرمکھ ابھیان چلائے ہیں. آدھونک سشست بل کے نرمان کے لیے یدھ کی پرستھتیوں میں پرشکشن کو مضبوط کیا ہے. پچھلے سپتاہ بند کمرے میں بیجنگ میں آیوجت 4 دیوسی بیٹھک کے انت میں پرستاؤ پارت کیا گیا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ پربھاوشیلتا کا مقابلہ کرنے کے لیے گہن دھیان سب سے زیادہ مہتوپورن ہے. اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے وشو سماچار سماپت ہوئے.
یہ تہران ہے اسلامی گانتانت ایران کی آواز.
راجنیتک چرچا.
श्रोताओ, राजनीतिक चर्चा के दैनिक कार्यक्रम में मोहम्मद मेहंदी का सलाम स्वीकार कीजिए। यमन के अल हुदैदा प्रांत के 700 वर्ग किलोमीटर के भूभाग से सऊदी गठबंधन के किराए के सैनिकों के बाहर निकलने के बाद अब इन इलाकों में आम जनजीवन बहाल हो गया है। यमन के अंसारुल्लाह से जुड़े संघर्षकर्ताओं का कहना है कि हमने अल हुदैदा के उन इलाकों का इंतजाम संभाल लिया है जिन पर सऊदी गठबंधन का कब्जा था। यहाँ से राजधानी सना जाने वाला राजमार्ग खोल दिया गया है। यहाँ पर जिस तरफ भी देखिए यही नजर आता है कि अब आम जनजीवन बहाल हो रहा है। उधर तईज में अल मखा के इलाके में 2 दिन से झड़पें तेज हो गई हैं। यमनी सेना और स्वयं सेवी फोर्स के सैनिक हमलावर और अतिक्रमणकारी सैनिकों को मार भगाने के लिए लगातार आगे बढ़ रहे हैं।
अक्सर من 700 की
इटली में होने वाले नए शोध से पता चलता है कि देश में बच्चों की निर्धनता अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। इटली में बच्चों को बचाने वाली एक संस्था की रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्तमान समय में इस देश में 15 लाख बच्चे पूरी तरह से गरीब हैं, जो पिछले 15 साल का एक रिकॉर्ड है। ये ऐसी हालत में है कि यूरो क्षेत्र की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में यूरो क्षेत्र की लगभग 60% आबादी इटली में रहती है। शोध से पता चलता है कि इटली में पिछले 15 साल में गरीब बच्चों की संख्या 3 गुना बढ़ी है। सामने आने वाले आंकड़ों के आधार पर पिछले वर्ष कोरोना महामारी की वजह से उन गरीब बच्चों में 2 लाख बच्चे और बढ़ गए जो निर्धनता का जीवन व्यतीत कर रहे थे।
La pandemia ha avuto un impatto fortemente negativo.
भारत की राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में प्रदूषण की समस्या ने खतरनाक रूप धारण कर लिया है और लोगों को जहरीली हवाओं से बचाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने कहा है कि शिक्षण संस्थानों को अगले आदेश तक बंद रखने का आदेश दिया गया है।
दिल्ली में स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, ट्रेनिंग सेंटर्स, लाइब्रेरी, ये सभी फर्दर ऑर्डर तक बंद।
यमन के अल हुदैदा प्रांत के 700 वर्ग किलोमीटर के भूभाग से सऊदी गठबंधन के किराए के सैनिकों के बाहर निकलने के बाद अब इन इलाकों में आम जनजीवन बहाल हो गया है। यमन के अंसारुल्लाह से जुड़े संघर्षकर्ताओं का कहना है कि हमने अल हुदैदा के उन इलाकों का इंतजाम संभाल लिया है जिन पर सऊदी गठबंधन का कब्जा था। यहाँ से राजधानी सना जाने वाला राजमार्ग खोल दिया गया है। यहाँ पर जिस तरफ भी देखिए यही नजर आता है कि अब आम जनजीवन बहाल हो रहा है। सुल्तान असदह की रिपोर्ट पेश करने साथ ही अहमद अब्बास।
यमन के अल हुदैदा प्रांत के 700 वर्ग किलोमीटर के भूभाग से सऊदी गठबंधन के किराए के सैनिकों के बाहर निकल जाने के बाद अब इन इलाकों में आम जनजीवन बहाल हो गया है। अल हुदैदा प्रांत के इस भाग पर सऊदी अरब 3 साल तक कब्जा जमाए बैठा था, जिसे अब निकलना पड़ा तो लोग खुश हैं। स्थानीय अधिकारी का कहना है कि सऊदी गठबंधन के वो सैनिक जिन्होंने अल हुदैदा के इस इलाके पर कब्जा कर रखा था पीछे हटने पर मजबूर हो गए। इन सैनिकों ने आम जनता की संपत्ति को बड़ा नुकसान पहुंचाया। ये तो पहले से मालूम था कि इन लोगों को इस इलाके से निकलना पड़ेगा और यमन की 1-1 इंच जमीन आजाद हो जाएगी। स्थानीय अधिकारियों ने इस इलाके में काम शुरू कर दिया है। बहुत जल्द यही दृश्य मारिब में भी देखने को मिलेगा कि वहां भी सऊदी के किराए के सैनिक भाग रहे हैं।
بعد كل المحاولات الفاشلة لتحالف العدوان
سعودی گٹھبندھن نے اپنے قبضے کے سمے بھرپور کوشش کی اور پوری طاقت جھونک دی، لیکن اس علاقے میں اسے ناکامی کے علاوہ کچھ نہیں حاصل ہوا۔ آخرکار اس نے مجبور ہو کر اس علاقے سے اپنے سینکوں کو باہر نکال لیا۔
ذهب تحالف العدوان من الحديدة ولم يبقى منه الا هذه
جہاں بھی دیکھیے حملہور سینکوں کے دھوست ہو چکے ٹینک اور بختر بند گاڑیوں کا ملبہ پڑا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ یمن کے انصار اللہ آندولن سے جڑے سنگھرش کرتا کا کہنا ہے کہ ہم نے الحدیدہ کے ان علاقوں کا انتظام سنبھال لیا ہے جن پر سعودی گٹھبندھن کا قبضہ تھا۔ یہاں سے راجدھانی صنعاء جانے والا راجمارگ کھول دیا گیا ہے۔ یہاں جس طرف بھی دیکھیے یہی نظر آتا ہے کہ اب عام جیون بحال ہو رہا ہے۔ ادھر تئیز میں المخا کے علاقے میں 2 دن سے جھڑپیں تیز ہو گئی ہیں۔ اس علاقے میں بھی سعودی گٹھبندھن کو ایک اور شکست جھیلنی پڑے گی۔
تحریر الیمن، کل الیمن۔
الحدیدہ سے آئی آر آئی بی کے لیے سلطان الصدح کی رپورٹ۔
اٹلی میں ہونے والے نئے شودھ سے پتہ چلتا ہے کہ دیش میں بچوں کی نردھنتا اپنے ریکارڈ استر پر پہنچ گئی ہے۔ اٹلی میں بچوں کو بچانے والی ایک سنستھا کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ورتمان سمے میں اس دیش میں 15 لاکھ بچے پوری طرح سے غریب ہیں، جو پچھلے 15 سال کا ایک ریکارڈ ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ یورو چھیتر کی تیسری سب سے بڑی ارتھ ویوستھا کے روپ میں یورو چھیتر کی لگ بھگ 60% آبادی اٹلی میں رہتی ہے۔ شوت سے پتہ چلتا ہے کہ اٹلی میں پچھلے 15 سال میں غریب بچوں کی سنکھیا 3 گنا پڑی ہے۔ سامنے آنے والے آنکڑوں کے آدھار پر پچھلے ورش کورونا مہاماری کی وجہ سے ان غریب بچوں میں 2 لاکھ بچے اور بڑھ گئے جو نردھنتا کا جیون ویتیت کر رہے تھے۔ حمید معصومی نجات کی رپورٹ پیش کریں، ساتھ ہی اختر عباس۔
اٹلی میں ہونے والے شوت سے پتہ چلتا ہے کہ دیش میں بچوں کی نردھنتا اپنے ریکارڈ استر پر پہنچ گئی ہے۔ اٹلی میں بچوں کو بچانے والی ایک سنستھا کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ورتمان سمے میں اس دیش میں 13 لاکھ بچے پوری طرح سے غریب ہیں، جو پچھلے 15 سال میں ایک نیا ریکارڈ ہے۔ اٹلی میں بچوں کو بچانے والی سنستھا کے پرمکھ کلاڈیو تزارو کا کہنا ہے کہ اٹلی میں نردھنتا کا جیون ویتیت کرنے والے بچوں کی سنکھیا کے بارے میں جو آنکڑے پیش کیے جا رہے ہیں وہ چنتا کا کارن ہے۔ دکشنی اٹلی میں نردھن بچوں کی سنکھیا اتری اٹلی کی تلنا میں ادھک ہے۔ سرکار کو اس سنکٹ پر نینترن پانے کے لیے جلدی کاروائی کرنی چاہیے۔ اٹلی میں بچوں کی مکتی کی سنستھا نے سچیت کیا ہے کہ کورونا، آرتھک اسمانتا، نردھنتا میں وردھی اور بچوں کے بیچ ساماجک ونچتتا کا کارن بنا ہے۔
یہ
رپورٹ تیار کرنے والی ایک مہیلا کاریکرتا وکی ڈے مارکی کا کہنا ہے کہ کورونا مہاماری نے بچوں پر بہت برا اثر ڈالا ہے۔ کورونا وائرس کی وجہ سے پریواروں کی وشم آرتھک استھتی سماج میں تیزی سے غریبی پھیلنے کا کارن بنی۔ جاری ورش میں پوری طرح سے نردھن بچوں کی سنکھیا میں تیزی سے وردھی ہوئی اور یہ سنکھیا بڑھ کر 13 لاکھ سے ادھک ہو گئی۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ یورو چھیتر کی تیسری سب سے بڑی ارتھ ویوستھا اور یورو چھیتر کی لگ بھگ 60% سے ادھک آبادی اٹلی میں رہتی ہے۔ شو سے پتا چلتا ہے کہ اٹلی میں پچھلے 15 سال میں غریب بچوں کی سنکھیا 3 گنا بڑی ہے۔ سامنے آنے والے آنکڑوں کے آدھار پر پچھلے ورش کورونا مہاماری کی وجہ سے ان غریب بچوں میں 2 لاکھ بچوں کی وردھی ہو گئی جو نردھنتا کا جیون ویتیت کر رہے تھے۔ حمید معصومی نژاد، آئی آر آئی بی نیوز، روم۔
بھارت کی راجدھانی دلی اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں پردوشن کی سمسیا نے خطرناک روپ دھارن کر لیا ہے اور لوگوں کو زہریلی ہواؤں سے بچانے کے لیے پریاس کیے جا رہے ہیں۔
تمام پریاسوں کے باوجود بھارت کی راجدھانی دلی اور اس کے نکٹ ورتی کھیتروں میں وایو پردوشن کی ورتمان استھتی کے درشٹی گت زہریلے ہوا سے مکتی پانے کے لیے آوشک اپائے کیے جا رہے ہیں۔ کچھ سدھار کے باوجود دلی میں آج ایئر کوالٹی انڈیکس اوسطن 362 درج کیا گیا، جو بے حد خراب شرینی میں آتا ہے۔ دلی این سی آر میں پردوشن نینترن کے لیے کئی قدم اٹھائے جا رہے ہیں، لیکن ابھی تک اس کا خاص فائدہ ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے۔ دلی کے پریاورن منتری گوپال رائے نے بتایا کہ شکشن سنستھانوں کو اگلے آدیش تک بند رہنے کو کہا گیا ہے۔
دلی میں اسکول، کالج، انسٹیٹیوٹس، ٹریننگ سینٹرز، لائبریری، یہ سبھی فردر آرڈر
تک۔ انہوں نے کہا کہ اناوشک سامانوں کو ڈھونے والے ٹرکوں کے پرویش پر 21 نومبر تک پرتیبند لگا دیا گیا ہے اور بھونوں کے نرمان اور توڑ پھوڑ کی کاروائیوں پر بھی روک لگا دی گئی ہے۔
میرے پیچھے جو دکھ رہا ہے، جو پولوشن کو کلین کرنے کے لیے ہے، اس کو صاف ستھرا کرنے کے لیے ہے، میرے وچار میں اس کی اپروچ بہت زیادہ نہیں ہے، کیونکہ یہ میں نے جتنا بھی پڑھا ہے یہ 1-2 کلومیٹر کور کر رہا ہے۔
اگر آپ سانس نہیں لے پاؤ گے تو کیا کرو گے؟ تو اگر سانس تو سب سے ضروری ہے۔ اگر ہم انوائرمنٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں، سب سے امپورٹنٹ تو یہی ہے کہ ہم ٹرانسپورٹیشن کو ہم जितना ज्यादा इलेक्ट्रीफाई कर सके।
दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर पाबंदी लगाए जाने के बाद बॉर्डर पर जाम की स्थिति पैदा हो गई है। दिल्ली में प्रदूषण के खतरनाक स्तर पर पहुंचने के बाद सरकारी कार्यालयों के 100% कर्मचारियों को घर से काम करने को कहा गया है। धुएं के बादल में घिरी राजधानी दिल्ली के 300 किलोमीटर दायरे में बने 11 थर्मल पावर प्लांटों में से केवल 5 को ही अपनी गतिविधियां जारी रखने की अनुमति दी गई है। प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने भारत का पहला स्मोग टावर लगाया है, लेकिन ये केवल 1 किलोमीटर के दायरे में प्रदूषण को कम करता है, जबकि दिल्ली का क्षेत्रफल 1484 स्क्वायर किलोमीटर है। दिल्ली के प्रदूषण को कम करने के लिए एंटी स्मोग गन का भी प्रयोग किया जा रहा है। कोरोना का प्रभाव तो अब काफी हद तक कम हो चुका है, लेकिन दम घोटने वाली हवा दिल्ली वासियों के लिए चिंता का कारण बन रही है। प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु दिल्ली सरकार ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान का जारी दूसरा चरण 19 नवंबर से 3 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। शमशाद काजमी, रेडियो तेहरान, दिल्ली।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। श्रोताओ, हमारी सबक अंतिम कार्यक्रम का सफल महिलाएं, पर उससे पहले आप सुनिए दूसरा साप्ताहिक कार्यक्रम आज की बात।
आज की बात।
दोस्तों, कार्यक्रम आज की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अहमद अब्बास। कार्यक्रम में आज हमारी चर्चा का विषय है भारत में पेगासस के मुद्दे पर नई बहस। भारत में वैसे तो इसराइली जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस का मुद्दा कई महीनों से चर्चा में है, लेकिन हालिया कई महीने में ये देखने में आया कि ये मुद्दा बार बार सामने आया है और इसराइल की भयानक काली करतूत दुनिया के अन्य देशों के साथ ही भारत में भी चर्चा के केंद्र में रही। इसराइली कंपनी एनएसओ ने यह सॉफ्टवेयर डेवलप किया और पूरी दुनिया में जासूसी का भयानक जाल फैलाया। वैसे तो इसराइल का दावा है कि इसे आतंकियों पर नजर रखने के लिए बनाया गया है, लेकिन आंकड़ों को देखा जाए तो साफ पता चलता है कि आतंकवादी तो नहीं, हाँ पत्रकारों, राजनीतिक व सामाजिक कार्यकर्ताओं और लोकतंत्र के लिए काम करने वाले लोगों के खिलाफ इसे खूब जमकर इस्तेमाल किया गया है। हालांकि अब इसराइली सरकार इस सॉफ्टवेयर और इसे बनाने वाली कंपनी से पल्ला झाड़ना चाहती है, लेकिन इसराइल को जानने वाले अच्छी तरह समझते हैं कि इस निंदनीय करतूत की सूत्रधार खुद इसराइली सरकार है। इस सॉफ्टवेयर ने भारत में भी बड़ी गंभीर चिंता पैदा कर दी है और मामला कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच के लिए विशेषज्ञों की टीम खुद गठित करने का फैसला किया और इस टीम को काफी अधिकार भी दिए, जिसके बाद भारत के विपक्षी दलों और मीडिया के कुछ गलियारों में इस पर खुशी जाहिर की गई कि अदालत के इस फैसले के बाद इस मामले का सही रूप से निदान होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा की आड़ में निजता का हनन नहीं हो सकता। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उसका प्रयास राजनीतिक बयानबाजी में शामिल हुए बिना संवैधानिक आकांक्षाओं और कानून के शासन को बनाए रखना है, लेकिन उसने साथ ही कहा कि इस मामले में दायर याचिकाएं ऑरवेलियन चिंता पैदा करती हैं। ऑरवेलियन उस अन्यायपूर्ण एवं अधिनायकवादी स्थिति, विचार या सामाजिक स्थिति को कहते हैं जो एक स्वतंत्र और खुले समाज के कल्याण के लिए विनाशकारी हो। वरिष्ठ वकील शादान फरासत का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत महत्वपूर्ण है और ये केंद्र सरकार के लिए एक तरह का बड़ा झटका है।
सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो पूरी तरह से एक संवैधानिक दृष्टि से दिया गया है इस, और कोर्ट ने खुद वो बहुत अच्छे से क्लैरिफाई किया और कहा कि ये जो मैटर है, निजता का अधिकार एक बहुत इंपॉर्टेंट अधिकार है हर नागरिक का, और उसको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, बट ओनली इन अकॉर्डेंस विथ लॉ, मतलब लॉ के हिसाब से, और वो भी प्रोपोर्शनैलिटी देखते हुए। ऐसा नहीं कि आप पूरा नेता का अधिकार खत्म कर सकते हैं। और इस केस में वो सारे कुछ स्टांस लिए नहीं गए बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ डिटेल प्रोवाइड ही नहीं की, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सारी जो उनकी एफिडेविट थी वो एक तरह से जो हमारे स्पेसिफिक एलिगेशन थे उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं था। तो इसलिए उन्होंने कहा कि प्रश्न दृष्टिया ये जो मैटर है इसमें हमने एक निजता के अधिकार के हनन का केस बना पाए हैं हम, और इसलिए इसमें एक इंडिपेंडेंट जांच की जरूरत है जो एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज के द्वारा की जाएगी, अलोंग विद उसमें उनके 7-6 मेंबर हैं कमिटी के।
वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ वरदराजन इस मुद्दे पर अपनी राय विस्तार से रख चुके हैं। सिद्धार्थ वरदराजन द वायर वेबसाइट के संपादक हैं, जिसका पेगासस मामले को प्रकाश में लाने में एक किरदार है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से वो संतुष्ट नजर आए।
इसकी अहमियत ये है कि जिस सवाल से सरकार अपने आप को बचाना चाह रही थी कि क्या आपने पेगासस खरीदा है, क्या आपने पेगासस इस्तेमाल किया है, अब कोर्ट ने कहा है कि जो नई कमेटी है, कमेटी इस सवाल का जवाब ढूंढ के निकालेगी। दूसरा पॉइंट कि राइट टू प्राइवेसी जो है, सरकार ने, हालांकि सरकार मानती है कि राइट टू प्राइवेसी है, लेकिन साथ साथ कोर्ट को हमेशा वो बता रही थी कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा का जो सवाल है, इसकी वजह से सरकार जो है पेगासस के बारे में कुछ नहीं बोल सकती। तो कोर्ट ने इस बात को खारिज किया है। कोर्ट ने कहा कि नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा अपनी जगह पे है, लेकिन इसको आप एक बहाना नहीं बना सकते अगर हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से आम शहरी के जो ह्यूमन राइट्स है उसका वायलेशन की अगर हम बात करें। और तीसरा और एक तरह से सबसे अहम पॉइंट यह है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस की भी जम के रक्षा की सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस किस्म की जो सर्वेलेंस है ये एक आजाद प्रेस पे जो है दबाव डालने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि एक चिलिंग इफेक्ट है अगर पत्रकार अपने सोर्सेज के कॉन्फिडेंशियलिटी की रक्षा नहीं कर सकता, तो जाहिर सी बात है कि जर्नलिज्म जो है, फ्री प्रेस, फ्री मीडिया हिंदुस्तान में फंक्शन नहीं कर पाएगा। और पेगासस का इस्तेमाल इतनी भारी मात्रा में, 40 से ज्यादा जर्नलिस्ट को निशाना बनाया गया, जाहिर है कि सरकार कहीं ना कहीं फ्री और इंडिपेंडेंट मीडिया पे दबाव रखने की कोशिश कर रहा था।
अंतर्राष्ट्रीय मीडिया कंसोर्टियम, जिसमें दवायर भी शामिल था, ने पेगासस प्रोजेक्ट के तहत यह खुलासा किया था कि इसराइल की एनएसओ ग्रुप कंपनी के पेगासस स्पाईवेयर के जरिए नेता, पत्रकार, कार्यकर्ता, सुप्रीम कोर्ट के अधिकारियों के फोन कथित रूप से हैक कर उनकी निगरानी की गई या फिर वे संभावित निशाने पर थे। इस कड़ी में गत 18 जुलाई से दवायर सहित विश्व के 17 मीडिया संस्थानों ने 50,000 से ज्यादा लीक हुए मोबाइल नंबरों के डेटाबेस की जानकारियां प्रकाशित करनी शुरू कर दी थी, जिनकी पेगासस स्पाईवेयर के जरिए निगरानी की जा रही थी या वे संभावित सर्विलांस के दायरे में थे। एनएसओ ग्रुप ये मिलिट्री ग्रेड स्पाईवेयर सिर्फ सरकारों को ही बेचता था। भारत सरकार ने पेगासस की खरीद को लेकर न तो इनकार किया है और न ही इसे स्वीकार किया है। इस खुलासे के बाद भारत सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करने के चलते एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, वरिष्ठ पत्रकार एन राम, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी एवं गैर सरकारी संगठन कॉमन कॉज ने याचिका दायर कर मामले की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की थी। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी इस मुद्दे को बार बार उठाते रहे हैं। जब एक्सपर्ट्स की टीम बनाने का सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया तो राहुल गांधी ने एक बार फिर इस विषय पर बयान दिया।
पार्लियामेंट के सेशन में हमने पेगासस का मुद्दा उठाया था। पेगासस देश पर, देश के इंस्टीट्यूशंस पर एक आक्रमण है, अटैक है, और हमने 3 सवाल पूछे थे। पेगासस को किसने खरीदा, क्योंकि पेगासस को कोई प्राइवेट पार्टी, इंडिविजुअल नहीं खरीद सकता है, पेगासस को सरकार ही खरीद सकती है, ये एक हथियार है। और हमने पूछा था सरकार में ऑथराइजेशन किसने दी, साइन ऑफ किसने किया। दूसरा हमारा सवाल था कि पेगासस किन किन लोगों पर डाला गया था, किन लोगों की टैपिंग की गई थी, किन किन के फोन्स इन्फेक्ट किए गए थे, क्योंकि एक लिस्ट है जिसमें चीफ जस्टिस का नाम है, सीईसी का नाम है, ऑपोजिशन के नेताओं का नाम है, बीजेपी के मंत्रियों का, एमपीज का नाम है, बहुत सारे एक्टिविस्ट का नाम है। तो हमने पूछा ये किन लोगों पर यूटिलाइज किया गया था। और आखिरी सवाल जो बहुत जरूरी सवाल है, क्या पेगासस का डेटा किसी और देश के पास भी था या सिर्फ हिंदुस्तान की सरकार के?
भारत सरकार इस मामले में शुरू से ही किसी भी तरह का जवाब देने से बचती रही है। सरकार की ओर से बार बार उन लोगों पर सवाल उठाया गया जिन्होंने इस मामले में सवाल करने की कोशिश की। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने इस मामले में कुछ इस तरह बयान दिया।
जो सरकार ने अपने एफिडेविट में प्रतिपादित किया था वही हुआ है। कमिटी अपनी जांच करेगी। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक मूल्यों में संपूर्ण रूप से विश्वास करती है। इस पूरे मसले को लेकर आदरणीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी ने भी पार्लियामेंट के पटल पर अपने वक्तव्य को रखा था। वो वक्तव्य भी इस एफिडेविट के एनेक्सर में मौजूद है और आप सबने देखा था। वक्तव्य को छीन कर फाड़ देना, स्टेटमेंट की कॉपी को फाड़ देना और वो भी सदन के पटल पर, यह अपने आप में बहुत ही निंदाजनक थी। राहुल जी, आपने वही शब्दों को रिपीट किया है और हमें लगता है आप तो कोर्ट गए नहीं, मगर एफिडेविट में जो सरकार ने कहा था उसी प्रकार से एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन हुआ है।
मगर वहीं भाजपा के नेता सुब्रमण्यम स्वामी पेगासस मामले में खुद भी सवाल उठाते रहे हैं और सरकार की नियत पर शंका जताते रहे हैं।
इफ ऑल दीज इंडियन नेम्स हैव कम, द ओनली पीपल हु कुड हैव गॉट दिस डन बाय पेगासस और द एनएसओ is the government of India. But the government of India is saying, we know nothing about this, etc., or words to that effect, a very roundabout way. The Supreme Court has now got into the act. Let's see how much they come up with. It's possible that the Israeli governments may also be forced to, because 2 days ago, the United States has banned it. Although there has been no infiltration into the United States government, but the United States thinks it's an obnoxious thing, a dangerous thing, and therefore they have banned it. And the Israelis have also now officially said we are distancing ourselves with the NSO.
अब इसी क्रम में एक नई कड़ी ये जुड़ी है कि विपक्षी नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर कहा है कि वो इस मुद्दे को संसद में फिर उठाएंगे। तो इस पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि कांग्रेस का क्या फैसला है ये अहम नहीं है, सर्वसम्मति से जो फैसला होगा उसके साथ सरकार खड़ी होगी। मुख्तार अब्बास नकवी ने गत रविवार को कहा कि पेगासस मामला बिना तर्क और तथ्य का मुद्दा है जिसे संसद में उठाने का कोई मतलब नहीं है और संसदीय कार्यवाही को आगामी विधानसभा चुनावों से जोड़ने की कोशिश करना ठीक नहीं है। उन्होंने मीडिया को दिए एक साक्षात्कार में यह भी कहा कि संसद के इस शीतकालीन सत्र में दोनों सदनों में आसन के फैसलों के आधार पर सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है। संसद का शीतकालीन सत्र आगामी 29 नवंबर से आरंभ हो रहा है जो 23 दिसंबर तक चलेगा। नकवी ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने अपना फैसला दे दिया, चीजें स्पष्ट कर दी हैं। कांग्रेस जासूसी की ऐसी जेम्स बॉन्ड है कि जो विपक्ष में रहती है तो जासूसी का भौकाल खड़ा करती है और सत्ता में आती है तो जासूसी का जाल बिछाती है। संसद सत्र से पहले विपक्षी एकजुटता होने की स्थिति में सरकार की रणनीति क्या होगी, इस पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमारी पार्टी सरकार और प्रधानमंत्री का भी मानना है कि विपक्ष मजबूर नहीं, मजबूत होना चाहिए। اس سے پہلے بھارت کی سنسد میں یہ مدعا بہت زور شور سے اٹھا تھا اور بڑا ہنگامہ ہوا تھا جس کی وجہ سے سنسد کی کارواہی بادھت ہوئی تھی۔ اس بار بھی سرکار کے سامنے ایک بڑی چنوتی ہوگی کہ وہ سنسد کو سچارو روپ سے چلائے۔ چونکہ حالیہ سمے میں کسان آندولن، لکھیم پور ہنسا سہت انیک گھٹنائیں ایسی ہیں جو سرکار کی مشکلیں بڑھا سکتی ہیں، اس لیے اسے سطر کے لیے بڑی محنت کرنی پڑے گی۔ اسرائیل ایک غیر قانونی شاسن ہے جو فلسطین کی دھرتی پر غیر قانونی قبضے کے بعد استتو میں آیا ہے۔ اس شاسن کا پورا وجود ہی سازشوں پر ٹکا ہوا ہے، اس لیے اسرائیل سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ اور شدہ اسی کے ساتھ کارکرم آج کی بات سماپت ہوتا ہے۔ یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ ریڈیو تہران سچائی اور ان سب کی آواز جن کی آواز کوئی نہیں سناتا۔ تازہ سماچاروں اور سٹیک سمیکشاؤں کے لیے ہم سے جڑیے اور ہمیشہ جڑے رہیے۔ اور اب ریڈیو تہران کی ہندی سیوا کا اگلا کاریکرم۔
سفل مہیلائیں۔
دوستو، کارکرم سفل مہیلائیں کی ایک انکڑی کے ساتھ آپ کی سیوا میں حاضر ہے رویش زیدی اور مریم مہردادی کا سلام سویکار کیجیے۔
دوستو، اس کارکرم میں ہم وبھن کھیتروں میں سفلتا کے جھنڈے گاڑنے والی ایرانی مہیلاؤں سے آپ کا پریچے کروا رہے ہیں۔ آج ہم اسپیس ٹیکنالوجی میں ایرانی مہیلاؤں کی بھومیکا پر چرچا کر رہے ہیں۔ کچھ سمے پہلے ایران کے انترکش انوسندان سنستان میں ایک دیش کی مہیلاؤں پر بھروسہ کریں شیرشک ایک سمپوزیم کا آیوجن کیا گیا۔ اسپیس میں اپنی اپستھتی درج کروانا ہر دیش کی اچھا رہی ہے، کیونکہ اس کا سائنس اور ٹیکنالوجی پر کافی پربھاؤ پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ اسپیس گتیویدھیوں سے ویاپار اور ارتھ ویوستھا کو بڑھاوا ملتا ہے، سوچناؤں اور وچاروں کے پرسار اور لوگوں تک جانکاریاں پہنچانے میں بھی اس کی وشیش بھومیکا ہوتی ہے۔ اس ادیوگ میں پرگتی اور وکاس کے کشمتا، یوگیتا، پرتھیبا اور وشیش دلچسپی کی ضرورت ہوتی ہے۔
یہ جاننا دلچسپ ہوگا کہ مہیلاؤں کی کھوجی عادت نے انہیں اسپیس انڈسٹری کی اور بھی آکرشت کیا ہے۔ ایرانی مہیلائیں بھی ان مہیلاؤں میں سے ہیں جنہوں نے وگیان اور وشیشتا کے شیتر میں اپنی سکریہ اپستھتی کے ذریعے دیش کی اسپیس انڈسٹری کی درشٹی کے انوروپ اپنے وکاس اور سشکتیکرن کے لیے اپیکت منچ تیار کیا ہے۔ اسپیس انڈسٹری میں کام کرنے والی مہیلائیں اپنی دلچسپی سے اسپیس پریوجناؤں میں سمے دیتی ہیں اور اپنی پریوجنا کی سفلتا کے لیے اپنی پوری طاقت اور ارجا لگا دیتی ہیں تاکہ اپنے دیش کا گورو بڑھا سکیں۔
جب ناہید ایک اپگرہ امیر کبیر وشو ودیالیہ کا سندیش اور شریف وشو ودیالیہ کی دوستی کا سندیش لے کر ککش میں استھاپت ہوا اور یہ خبر دنیا بھر میں پھیلی تو کم ہی لوگ جانتے تھے کہ کئی ایرانی مہیلا ویگیانکوں نے اس کھیتر میں مہتوپورن بھومیکا نبھائی ہے۔ حالانکہ ایرانی مہیلائیں دیش میں کئی ویگیانک پریوجناؤں اور اودیوگک کھیتروں میں سکریہ رہی ہیں और उन्होंने विकास में अहम भूमिका निभाई है। अपने देश की महिलाओं पर भरोसा करें कार्यक्रम का आयोजन साइंस और टेक्नोलॉजी के विकास में महिलाओं की उपलब्धियों का सम्मान करने के लिए किया गया था। इससे अंतरिक्ष क्षेत्र की तकनीक के विकास में महिलाओं की भूमिका में वृद्धि होती है और उनका आत्मविश्वास मजबूत होता है। इस क्षेत्र में लड़कियों और युवाओं की दिलचस्पी बढ़ती है।
अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में 18 साल के शोध का अनुभव रखने वाली इंजीनियर मरियम मुसबी कहती हैं, नाहिद उपग्रह के एक दूरसंचार उपग्रह है और महिलाओं की भागीदारी से इसका यांत्रिक प्रशिक्षण, कंपन और यांत्रिक शॉक सफल रहा है। वे इस बात से खुश हैं कि नाहिद उपग्रह को शांतिपूर्वक उत्पादन के रूप में अंतर्राष्ट्रीय रजिस्ट्रेशन मिल गया है, जिससे ईरान उन देशों की सूची में शामिल हो गया है जो अंतरिक्ष तकनीक से लैस हैं।
इंजीनियर वफा सदकी पयाम उपग्रह परियोजना के सिस्टम के नियंत्रण की प्रबंधक हैं। उन्होंने तेहरान के आमिर कबीर विश्वविद्यालय में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और दूर संचार प्रणाली में पढ़ाई की है। उन्होंने अंतरिक्ष से संबंधित अपनी गतिविधियों की शुरुआत 1386 हिजरी शमसी से की थी। वो शुरुआत से ही एक युवा वैज्ञानिक के रूप में इस परियोजना के प्रबंधक के रूप में जुड़ी रही हैं। इस उपग्रह की तकनीकी विशेषताओं और उसके मिशन के बारे में वो कहती है, आमिर कबीर के उपग्रह पयाम की परियोजना के तहत अनुसंधान के लिए एक छोटा उपग्रह डिजाइन किया गया और उसका निर्माण किया गया। इसका वजन करीब 100 किलोग्राम है। इसका निर्माण पूरा होने के बाद पिछले साल उसे अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया, लेकिन वो कक्ष में 3 मिनट से ज्यादा नहीं रुक सका। लेकिन वही 3 मिनट हमारे लिए बेहतरीन थे क्योंकि हमें उसके सिग्नल्स प्राप्त हुए थे।
इस उपग्रह के निर्माण से हमारी टीम को जो जानकारी और अनुभव हासिल हुआ है, उससे हमें अगले प्रोजेक्ट को तेजी से पूरा करने में मदद मिलेगी। इसीलिए जब मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में सोचती हूँ तो उसे अपने जीवन की एक सफल घटना के रूप में याद करती हूँ। इस उपग्रह के निर्माण में शामिल युवा टीम का मानना है, पयाम उपग्रह उसके लिए कोई हार नहीं है बल्कि एक सपना था जो पूरा हो गया है।
उनका कहना है कि पयाम उपग्रह के मॉडल के निर्माण का सपना 1386 में आमिर कबीर औद्योगिक विश्वविद्यालय में देखा गया था। उस समय एक युवा टीम का गठन किया गया था जिसका सपना उपग्रह का फ्लाइट मॉडल तैयार करना था। अंतरिक्ष संस्थान ने आमिर कबीर विश्वविद्यालय की युवा टीम पर विश्वास किया और इस महत्वपूर्ण काम को उसे सौंप दिया। टीम ने डर, भ्रम लेकिन आशा के साथ 1386 में इस परियोजना पर काम शुरू किया।
दोस्तों, इस क्षेत्र में सक्षम महिलाओं की उपस्थिति के बारे में ईरानी महिला वैज्ञानिक का कहना है कि संख्या से इतर पयाम उपग्रह परियोजना में शामिल महिला विशेषज्ञों ने संकेतों की गुणवत्ता में सुधार करने में भूमिका निभाई और पुरुष विशेषज्ञों के साथ मिलकर अच्छा परिणाम हासिल किया। महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि हमने पयाम परियोजना के निर्माण की प्रक्रिया स्वदेशीकरण के साथ शुरू की, क्योंकि प्रतिबंधों की वजह से दूसरे देश हमारा उपग्रह लॉन्च करने के लिए तैयार नहीं थे।
इसी वजह से उपग्रह के निर्माण के लिए पारिस्थितिक तंत्र को स्थानीय बनाने के लिए हमने कदम उठाए, इस तरह से कि उपग्रह पयाम के सभी उपकरण और सब सिस्टम देश की नॉलेज बेस्ड कंपनियों के प्रयासों से तैयार हुए थे। इस सैटेलाइट के निर्माण के लिए विशेषज्ञों की टीम का गठन करना एक मुश्किल काम था, लेकिन हम उसके गठन में सफल रहे। हमने शून्य से काम शुरू किया। हमारा मानना था कि हमारे अंदर इसकी क्षमता है, इसीलिए हम उपग्रह का निर्माण कर सकते हैं। आज उपग्रह के निर्माण के लिए हमारे पास 200 प्रतिभाशाली वैज्ञानिक हैं। जो अनुभव हमने हासिल किए हैं उससे इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हम अपना काम जारी रख सकते हैं। वास्तव में इस उपग्रह का सबसे महत्वपूर्ण कार्य उप प्रणालियों की तकनीक को स्थानीय बनाना है और अंतरिक्ष में लॉन्च के बाद उड़ान का इतिहास रखना है। उड़ान के इतिहास से हमें अगले उपग्रहों को बेहतर रिजोल्यूशन और उच्च सटीकता के साथ तैयार करने में मदद मिलती है।
दोस्तों, इंजीनियर वफा सदकी का कहना है कि सौभाग्य से अंतरिक्ष अनुसंधान की तरह हमारे वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि महिलाओं को सभी क्षेत्रों और खास तौर पर अंतरिक्ष के क्षेत्र में विकास करना चाहिए। हालांकि इससे पहले के दशकों में इस तरह से नहीं सोचा जाता था। पयाम उपग्रह की टीम में 20% महिलाएं थीं। वे परियोजना की 9 उप प्रणालियों में सक्रिय हैं। पूरे साहस के साथ ये बात कही जा सकती है कि जिस विभाग में भी उन्होंने काम किया उस विभाग के नेतृत्व की जिम्मेदारी संभाली। 1391 और 1392 के वर्षों में तुलनात्मक आंकड़ों से पता चलता है कि लेखों, पेटेंट के रजिस्ट्रेशन और किताबों के लिखने में महिलाओं की भागीदारी में 103% की वृद्धि हुई है।
ईरान के अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र में महिला विशेषज्ञों की सक्रियता इस बात की निशानी है कि 1391 से 1398 हिजरी शमसी तक महिलाओं ने अनुसंधान की ओर से 393 लेख प्रकाशित किए हैं, जो कुल लेखों का एक तिहाई भाग हैं। 38 लेख ISI, 9 पेटेंटों का रजिस्ट्रेशन, 23 लेख ISC, 8 किताबों का संकलन और 13 राष्ट्रीय स्टैंडर्ड्स का संकलन इन महिलाओं की अन्य उपलब्धियों में से हैं।
दोस्तों, हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। हमें अनुमति दें।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। श्रोताओं, हमारे प्रयास आपको कैसा लगा इस बारे में हमें अवश्य बताइएगा। और इसी के साथ रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा की ये सभा संपन्न होती है। खुदा हाफिज। Thank you.